मन में अद्भुत शक्ति जगी है हे ब्रह्मा बाबा तपस्वी ब्रह्मा बाबा।
ओम शांति। मधुबन वरदान भूमि से प्यारी बाप दादा, मीठी मम्मा, ब्रह्मा बाबा, सब मधुबन निवासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बाबा के प्रेम भरे गीत को सुनकर, बाबा की पूरी जीवन कहानी हमारे सम्मुख आ जाती है और उन्हें सामने देखकर एक अलौकिकता, एक दिव्यता, रूहानियत और जीवन में जो हमें बनना है, करना है, वो हमारे सामने आ जाता है। परिस्थितियां हल्की सहज लगने लगती हैं क्योंकि बाबा हमारे आदर्श। ब्राह्मण जीवन में जन्म से ही हमें लक्ष्य मिला कि तुम्हें फॉलो फादर करना है, सी फादर सी मदर, उन्हें ही देखना है, उन्हें ही फॉलो करना है। मम्मा का भी मास अभी चल रहा है, इस पूरे मास में हमने मीठी मम्मा को भी बहुत प्यार से देखा, अपने मन की आंखों से रोज उनकी जो विशेषताएं हम सुन रहे हैं, उनकी मुरली सुन रहे हैं, तो अपने माता पिता को सामने देखते हुए हम सब में कितना उमंग, उत्साह, कितनी शक्ति भर जाती है। लगता है कि हम भी ऐसे ही बने जैसे हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया हम सबके सम्मुख भी और सारी मानव जाति के भी सम्मुख, जो आदि पिता और आदि माता हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर ही है फॉलो फादर करने में, फॉलो मदर करने में। और जो योग्य बच्चे होते हैं, लायक बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता को पूरी तरह, उनके हर शब्द को अपने जीवन में उतारते हैं। यही हम सबका ध्येय। 2019 के दिसंबर महीने में बाबा की जो अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें बाबा ने इस बात को बहुत अंडरलाइन कराया था कि तुम्हें बाप समान बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। अनेक बार बाबा ने उस 31 की अव्यक्त मुरली में इस बात को कहा। इसीलिए 2020 के लिए, पूरे वर्ष के लिए फॉलो फादर एक विषय लेकर के बहुत अच्छा पुरुषार्थ 15-15 दिन के लिए, कि बाबा कैसे थे, उनके एक एक गुण, उनकी एक एक विशेषता, उन्हें लेकर उनकी गहराई में उतर कर सबने बहुत अच्छा अनुभव किया। आप सबने उन अनुभवों को जिया और वो हमेशा के लिए आपके खजाने बन गए। लेकिन लगा कि और गहराई से हम इसे जाने, समझें, क्योंकि पिता के समान ही बनना है, फाइनल हमारा लक्ष्य यही है। तो फॉलो फादर 2 फिर से 2021 में मार्च से हम लोगों ने शुरू किया। तो मार्च से लेकर के अब तक जून महीने तक, इन 4 मास में हर 15 दिन में एक सुंदर अभ्यास और एक धारणा लेकर के हम सब चल रहे हैं। अल्फाबेटिकली इस बार सुंदर अभ्यास हो रहा है, ए से लेकर एच तक हम पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत गहरी गहरी जो बाबा की धारणाएं हैं, वो सारी धारणाएं, सारी बातें हमारे जीवन में उतरती चल रही हैं। तो बाबा ने हमें कुछ समय पहले एक संदेश में भी कहा कि तुम्हें प्रिपरेशन लीव मिली हुई है, तो हम सब अब पूरी तरह से, अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। और साथ ही आज खास रिविजन के लिए हम बैठे हुए हैं कि मार्च से लेके अब तक जो बातें हम लोगों ने सुनी, जिन्हें अभ्यास किया, प्रश्न कुछ आपने प्रेषित किए हैं, उन प्रश्नों को हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई जी के सम्मुख रखेंगे, उनका उत्तर प्राप्त करेंगे और साथ ही उन्हें अपने जीवन में लाने का कृत संकल्प करेंगे। आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
शुक्रिया।
जब कभी ये विषय आता है भ्राता जी, फॉलो फादर मदर, मैं खास मम्मा का मास है तो मदर कहूंगा, फादर पे तो हम आएंगे ही, ऐसी कौन सी बात आपको लगती है हम अम्मा की जोन में थी जो सबसे पहले नंबर वन कर्मातीत 29 ईयर्स लिए मम्मा ने लेकिन सबसे आगे निकल गए?
किसी भी महान आत्मा को यदि इस शिखर पर पहुंचना हो जिसपे मामा और बाबा पहुंचे, तो पहली धारणा उनके लिए होती है संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, जो मम्मा का स्वरूप था। उसकी यादगार में हम जानते हैं हमारी बहुत बहुत सम्माननीय और पूजनीय सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, जिनकी यादगार में ये महान देवियां हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी बनी थी। और निर्विकारीता का स्वरूप है संपूर्ण आत्मिक दृष्टि। कोई उन्हें देह दिखाई नहीं देता था, सबके प्रति चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ, सबको प्रेम बांटने वाली, सबको संतुष्ट करने वाली, संतुष्ट मणि संतोषी मां। एक तो ये क्वालिटी थी, बहुत सहनशील, ज्ञान की तो ऐसी देवी थी। मैं तो सोचता हूं जब हम छोटे आए थे और शिव बाबा ने भी तब तक गुह्य ज्ञान दिया नहीं था, अभी वो तो अव्यक्त होने के बाद हमें मिला, उस टाइम माथेश्वरी के पास वो अति गुह्य ज्ञान था। हम तो सुन सुनकर छोटे थे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे शास्त्र आदि, सुन सुन के मतलब सरप्राइज होते थे कि वाह क्या प्रभु जी ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है उस आत्मा को। तीसरी बात, भगवान की नजरों में थी, क्योंकि उनकी अति आज्ञाकारी, सच्चाई से भरपूर, सुखों की देवी, यही तो भगवान को प्रिय हैं, संपूर्ण सत्य। और मुझे जो उनकी एक बात, गुण तो सारे ही थे, पर मुझे जो एक बात बहुत अपील की, अट्रैक्ट की, कि मामा के पास तो देखो 350 से ज्यादा भाई बहने रहते थे, छोटे बड़े बुजुर्ग, कोई गलती भी करते थे, कोई टकराव कर लेते थे, सब मामा के पास आते थे, कोई बार बार वही गलती करके भी आते थे, लेकिन मामा के चित्त पर किसी का अवगुण ठहरता नहीं था। बहुत बड़ी धारणा है, नहीं तो वो व्यक्ति जब आएगा मनुष्य देखेगा ये ऐसा ही है, बहुत चुगली करता है, दूसरों पर क्रोध करता है, मामा के अंदर नहीं ठहरता था। किसके अंदर नहीं ठहरेगा? जो बहुत निर्मल हैं, जिनका चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो गया और शुभ भावनाओं से भरा हुआ है, वो सदैव ये नहीं सोचती है क्रोध करता है, वो ये सोचती है कि इसके क्रोध से इसको छुड़ाना है। ऐसी महान थी हमारी मातेश्वरी, योग तपस्या तो उनकी गायन योग्य है। दो इन महान आत्माओं ने, मातेश्वरी सरस्वती और ब्रह्मा बाबा ने, गहन तपस्या करके अपने फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त किया।
जी जी जी, और हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है, आनंदित होते हैं हम, गदगद होते हैं कि ऐसे माता पिता के हम बच्चे हैं।
बिल्कुल, सबसे गर्व की बात है।
जी जी जी, जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, और हमारे पिता तो फिर क्या कहें। तो वैसे ही हम बने, यही एक ध्येय लेकर के हम चल रहे हैं ब्राता जी। और पिछले वर्ष भी बाबा की जो भी शिक्षाएं थी, चाहे वो निराकारी हो, निर्विकारी हो, निरहंकारी हो, संपूर्ण समर्पणता हो, इन सब पे बहुत गहराई से अभ्यास किया गया। इस बार जो ए टू जेड की ओर हम चल रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा ब्राता जी कि ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हमने इन्हें प्रेषित की हैं, आपने सबको बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है हमेशा की तरह। इस बार मम्मा बाबा और आपके अनुभवों से जुड़े आश लें। प्रारंभ में ब्राता जी जो हमने मार्च से शुरू किया, ए उसमें अंतर्मुक्ता और आत्माभिमानी स्थिति थी, तो यहीं से मैं शुरू करूंगा। तो प्रश्न जो आया है वो ये है कि बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी भी बनो तो रमणीक भी बनो, लेकिन जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो बाहरी वातावरण में घुलने मिलने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे में हम बैलेंस कैसे रखें?
बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और कभी कभी महावाक्यों में एक शब्द भी आता है कि अंतर्मुखी होकर फिर बाह्य मुक्ता में आओ। लोग सोचते हैं ये बाह्य मुक्ता में क्यों आए, इसका सिंपल मीनिंग है कि अंतर्मुखी रहकर फिर कर्म क्षेत्र पर आओ, संबंध संपर्क में आओ। तो वास्तव में जब मनुष्य अंतर्मुखता की गहराई में चला जाता है, तो उसको वाचा में आना भी, या लोगों से बहुत मिलन घुलन करना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, लेकिन जब इसका अभ्यास बहुत हो जाता है तो अंतर्मुखता के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य के अंदर चीयरफुलनेस, रमणीकता, ये स्वतः ही आ जाती है। उसकी नेचर में ह्यूमरस स्वतः ही आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक एक गुण डेवलप हो जाता है। और अंतर्मुखी रहने के बाद, मान लो सारा दिन कोई व्यक्ति मौन में भी रहा है और अंतर्मुखी रहा, ज्ञान के गहन चिंतन में रहा है, और 8 बजे उसने अपना मौन तोड़ा है, तो ये तो नहीं वो एकदम बाह्यमुखी हो जाएगा जैसे उसने कुछ नहीं किया आज, लेकिन उसके अंतर्मुखता की झलक के साथ वो लोगों से बहुत प्यार से मिलेगा, मुस्कुरा कर मिलेगा। जो उसकी सौम्यता उसने सारा दिन प्राप्त की है वो प्रैक्टिकल में उसके व्यवहार में झलकेगी। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं, सारा दिन तो मौन रहे, अंतर्मुखी रहे, लेकिन जब मुंह खोला तो धुआं निकलने लगा, तो ऐसा वो नहीं होगा। तो ये है अंतर्मुखी होकर कर्म में आना, आ जाएंगे, सहज आ जाएंगे। इट विल टेक लिटिल टाइम, ये तो सत्य है, क्योंकि मैं भी जब बहुत अंतर्मुखी रहता था शुरू में तो बोलने की इच्छा नहीं होती थी, और लोग मुझे कहते हैं बड़ा गंभीर रहता है, मनहूस सा हो गया है, उन्हें थोड़े पता था मैं क्या कर रहा हूं अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो क्वालिटी डेवलप हो गई। मुझे भी लगता था कि यार ये लोग बात तो ठीक कह रहे हैं, पर वो अंतर्मुखता होती इतनी डीप थी कि उसके बाद ऐसे बाह्यमुखी होना कठिन था, लेकिन मैंने ये देखा धीरे धीरे वो नेचर बन गई, तो बैलेंस हो गया।
मतलब ये होना चाहिए कि हम जब चाहें बिल्कुल अंदर चले जाएं और जब आवश्यकता हो हम बाहर चले आएं और वो स्थिति हमारी बनी रहे। जैसे हम बाबा के लिए भी सुनते हैं कि बाबा बहुत रमणीक थे, अंतर्मुखी के साथ साथ रमणीक भी थे, तो लगता है कि इतनी गहन साधना की और साथ साथ इतनी रमणीकता, तो ये तो बहुत ही अद्भुत सा बैलेंस।
बिल्कुल, मैं अनुभव सुनाऊं तो बाबा संपूर्ण योग युक्त हैं अपने कमरे में
जी,
लेकिन एक माता अपने 2 बच्चों के साथ मिलने आ जाती है और बाबा बच्चों से खेल रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता कि ये महान योगी अब महान योग तपस्या में बैठा था और 2 मिनट में ये बच्चों से खेल रहा है, तो ये एक सुंदर बैलेंस बाबा के जीवन में था।
जी जी, मतलब ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हमें इस पर ध्यान और अटेंशन जरूर रखना है। ये भी बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, तो ये संकल्प आता है कि क्यों ना अंदर ही रह करके वो आनंद परमानंद की स्थिति में हम रहें।
बिल्कुल, ये तो सत्य है, और वो समय भी अब जल्दी आ रहा है जब हम और चीजों से मुक्त होकर अंदर आत्मिक स्वरूप में रह के परम सुखों की लंबी अनुभूति में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि दूसरे लोग हमारे सामने ऐसे आएंगे भी नहीं जिनके साथ हमें ज्यादा बाह्यमुखी होना पड़े। अगर हम कर्म क्षेत्र पर हैं तो थोड़े संकल्पों से, थोड़े बोल से, इशारों से हमारे कार्य पूर्ण होंगे और फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो सचमुच ये सुख तो परम सुख है और इसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती और न होनी चाहिए।
जी जी जी, प्राथमिकता किस चीज को दी जाए? कई बार हमारी बहुत सारे भाई बहन है जो अभी ज्ञान में 2 साल 4 साल 5 साल से, उन्हें लगता है कि अभी हम बहुत देर हो गए हैं, तो क्यों ना गहन साधना की जाए, अंदर ही रहा जाए, बाहर तो हम बहुत रह लिए, बहुत बातचीत कर लिया, बहुत सांसारिकता निभा ली, कार्य व्यवहार निभा लिया, अब क्यों ना यहीं रहा जाए, तो ये एक संकल्प बहुत दृढ़ रहता है।
कईयों को आता है और आना चाहिए, क्योंकि जो रेस में पीछे रह गए उन्हें पावरफुल दौड़ी तो लगानी पड़ेगी, दे आर ट्रू। लेकिन अगर आप ग्रस्त में हैं और आप बच्चों को संभाल रहे हैं और आप जॉब में भी, आजकल बहनों की बात मैं करूं
जी,
तो जितना समय हो आप निश्चित कर लेंगे सवेरे 8 बजे तक 7 बजे तक आप गहन अंतर्मुखता में रहें, फिर कामकाज में बच्चों की पालना, ये वो, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, उन्हें खिलाना पड़ेगा, तो फिर जैसे संभव हो कर्म क्षेत्र पर थोड़ा कम बोलें। ये नहीं बोल ही रहे हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, बोल ही रहे हैं, बोल गए तो चुप रहने का है, लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है दूसरे लोगों को, भाई चुप तो हो जाओ, दूसरों को तो मौका दो, तो ऐसा भी ना हो। और जो कर सकते हैं, मान लो एक कुमार है
जी,
कन्या है, वो जॉब में है, कहीं रहते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो उन्हें अवश्य अवश्य करना चाहिए।
जी जी जी, बिल्कुल, मतलब हमें इस किसी प्राथमिकता देते हुए हम जरूर गहराई से इसके अंदर उतरें और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। आत्माभिमानी स्थिति की बात ब्रदर जी, लगभग और प्रतिदिन की साकार मुरली में बाबा कहते हैं। यही हमारा पहला पाठ और यही अंतिम पाठ, बाबा ने ये भी कहा है। तो आपके अनुभव में ऐसा क्या है कि ऐसी क्या गहराई है इसमें जो बाबा इसे इतना महत्व देते हैं, और यही हमारा पहला और अंतिम पाठ है, और इसे हम मम्मा बाबा की तरह सहज और नेचुरल कैसे कर रहे
हैं? देखिए, मैंने इस पर क्लासेस तो बहुत कराई हैं, लोगों ने सुना भी होगा। बाबा की मुरली में जब ये आता है और जब मैं उसको कैच करने लगा कि योग लगाते लगाते अंत तक तुम आत्माभिमानी बन जाओगे, और जो आत्माएं संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाती हैं वे होते हैं असरतन, तो काफी डेप्थ इसमें आ गई। मैं आत्मा हूं केवल ये सोचने से काम नहीं चलेगा, पहले अशरीरी होने का अभ्यास, फिर अपने स्वमान को बढ़ाना, भिन्न भिन्न स्वमान है वो भी आत्मा के स्वरूप हैं, और फिर आत्मा के जो सातों गुण हैं उन पे चिंतन करके उसको जीवन में लाना। Therefore it takes time। मान लो आत्मा का पहली जो क्वालिटी हम वर्णन करते हैं वो ज्ञान स्वरूप है। अभी ज्ञान स्वरूप यानी जो ज्ञान कहता है वही जीवन, अब ये एक दिन का काम नहीं है। प्रेम स्वरूप, प्रेम से भरपूर, जैसे हम पूर्वज हैं या जगत की मां हैं हम, और सबको प्यार बांटने वाले हैं, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नफरत ये है ही नहीं। इट विल टेक टाइम। शांत, शांति हमारी ऐसी गहरी हो जाए कि कोई हमें अशांत कर ही ना पाए, शांति हमारी शक्ति बन जाए। सुख, दुखों की अविद्या हो जाए, ईश्वरीय सुख में, सुख लेन देन में इतने आत्मा मगन हो जाए, पवित्रता संपूर्ण हो जाए, शक्तियां बढ़ जाएं, भय खत्म हो जाए, मन खुशियों से आनंद से भरता रहे, निरंतर अतिंद्रिय सुख में रहे, इसको कहते हैं परमानंद। तो ये लंबे समय की साधनाओं से होता है, लेकिन जो नजदीक में आए हैं एक दो साल से, वो भी अगर इस पे गहन चिंतन करके इसको अभ्यास में लाएंगे तो अब समय की मदद बहुत है। बहुत आत्माओं के अनुभव सबके साथ बहुत है, जैसे मैं कह रहा था मामा के सामने तो किसी का अनुभव थे नहीं, उन्होंने तो खुद एग्जाम्पल सेट किया। ब्रह्मा बाबा के सामने तो किसी के अनुभव थे नहीं, उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट किया। तो हम भी इन सब बड़ों के अनुभवों से सीखकर जल्दी इस रेस में आगे जा सकते हैं।
बिल्कुल। और व्रता जी, एक संदेश भी अभी आया था जो मम्मा के चल रहे हैं अभी दिन, तो कि मम्मा भी अभी ऊपर से खास शक्ति दे रही है बच्चों को ताकि वो भी अच्छी अनुभूतियों में रहें और जल्दी से जल्दी बने, और बाबा तो हमेशा हमारे साथ शक्ति देने के लिए हैं ही, और आपने कहा समय की भी बहुत मदद है, तो यदि हम पूरा जोर लगा दें तो निश्चित रूप से सारी अनुभूतियां हमारे जीवन में उतरती चलेंगे।
गुलजार दादी भी है ऊपर
जी जी,
और मामा और दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी, भले ही इनके पुनर्जन्म हुए हैं लेकिन बाबा इन सबको वरिष्ठ रूप में ऊपर इमर्ज करके इनके माध्यम से खुद काम करता है। तो पीछे है बाबा, शिव बाबा, ऑल माइटी अथॉरिटी, और मीडियम है ये, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं डायरेक्ट उससे एनर्जी नहीं ले सकती
जी।
अब मान लो जिसका संबंध दादी प्रकाशमणि से बहुत ज्यादा है, सूक्ष्म में बहुत है, तो शिव बाबा की शक्तियां उनके माध्यम से उनको जाएंगी, तो इसलिए बाबा इन फरिश्तों के द्वारा नीचे आत्माओं को मदद करा रहे हैं
जी जी जी। भ्राता जी, बी में हमने लिया था बिंदु रूप और बीज रूप स्थिति, आप सबने इसका भी बहुत सुंदर अभ्यास किया होगा। तो भ्राता जी, प्रश्न ये है कि बीज रूप स्थिति एग्जैक्टली क्या है ये, और कितनी देर इस स्थिति में रहा जा सकता है, और क्या यही हमारी ज्वालामुखी स्थिति भी है?
ज्वालामुखी, पावरफुल, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप, बिंदु रूप, ये एक ही स्थिति के नाम है, और इसकी डेफिनेशन है जब हम बाबा के स्वरूप पर एक संकल्प मन में रखते हुए स्थिर हो जाए लंबे समय के लिए, ये बीज रूप स्थिति है। वो लंबा समय हम आधे मिनट से शुरू कर सकते हैं, फिर एक मिनट, फिर तीन मिनट, फिर बढ़ा के, कि केवल शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, ऑल माइटी वही दिखाई दे रहा है। मन में एक संकल्प है, कोई भी सुंदर, ये हमारे माता पिता हैं, या मेरा गुड फ्रेंड है, या मुझे पावन बनाने आया, बस उसको देख रहे हैं, एक स्वरूप ये। दूसरा, उसकी एनर्जी आ रही है, इसे एक संकल्प में हम स्थित हो जाएं, उसकी एनर्जी आ रही है, ऑलमाइटी है तो सारी माइट मुझे आ रही है, ज्ञान सूर्य है तो उसका संपूर्ण प्रकाश मुझे तेजो में बना रहा है। इस एक संकल्प में बैठ जाएं कुछ देर, एक मिनट से शुरू करें, आधे मिनट से शुरू करें जो नए हैं, लेकिन ये परम आवश्यक है कि सारा दिन मनुष्य व्यर्थ से मुक्त रहे। जो व्यर्थ में रहते हैं, इधर उधर की सुन रहे हैं, बाह्य मुखी हैं, तेरे मेरे में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बीज रूप एक कल्पना ही रह जाएगी।
जी जी जी, मतलब एक संकल्प और वो एक सुंदर गहन फीलिंग बाबा दे रहे हैं। मेरा स्वरूप उस समय क्या ऊपर बिंदु का हो या यहाँ भी मैं अपने आप को उस स्थिति में स्थित
कर सकता। ये प्रश्न बहुतों के मन में आता है कि दोनों पे कंसंट्रेट कैसे करें, मैं आत्मा और शिव बाबा
जी।
दो पे कंसंट्रेट नहीं होता, एकाग्रता का अर्थ ही होता है एक पर बुद्धि स्थिर होना। तो पहले हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे बस, चाहे हम यहाँ हैं चाहे परम धाम में, फिर केवल शिव बाबा। हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आत्मा हूं, हम उस स्वरूप में स्थित हो गए अच्छी तरह, भले उसमें आप एक दो मिनट लगा लें और फिर बाबा से एनर्जी प्राप्त करें। तो दो पे एकाग्रता नहीं होती कभी, एकाग्रता का अर्थ होता है एक पर।
हमें ये बैठ कर करना होगा या इसे कर्म क्षेत्र पे भी किया जा सकता है कर्म करते हुए?
मैंने जब से लॉकडाउन लगे थे एक बात सभी को कही कि 10-10 मिनट चार बार बैठने का अभ्यास करो
जी,
एक प्लान बनाओ। इसमें क्या होगा, चार बार अगर बैठेंगे अमृत वेले के अलावा तो मन स्थिर होगा, योग करने को मन करेगा। इसमें रूहानी ड्रिल की जो प्रैक्टिस बाबा ने बताई है, पहले यहाँ अपने स्वरूप में स्थित होना, फिर सूक्ष्म लोक में जाना, बाबा से बातें करना, दृष्टि लेना, वरदान लेना, फिर परम धाम में जाना, बीज रूप होना, फिर वापिस आना। इसको अगर कोई तीन बार भी कर ले 10 मिनट में तो बिंदु रूप होना बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो बैठ के थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, और जब बैठ के ज्यादा हम कर लेते हैं तो चलते फिरते भी हमारी ये स्थिति बनती है, ये पॉसिबल है कि बुद्धि शिव बाबा पे लगी हुई हो या हम भोजन बना रहे हो, बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप को निहार रही हो या हम कुछ लिख रहे हो, हम मुरली सुन रहे हो और अभ्यास कर रहे हो, बाबा की किरणें पड़ रही हैं। ये अभ्यास के बाद होगा, तो कर्म में भी हो सकता है और बैठ के भी।
जी जी, मतलब जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो तो ये सहज होता चलेगा और नेचुरल, जैसे मम्मा बाबा की लाइफ में ये समा गया था हमारी भी लाइफ में आएगा। सी हमने कंपेनियन और चीयरफुलनेस लिया था, आप सबने इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन एक प्रश्न जो उस समय भी और अभी भी आया प्रता जी, वो ये कि निरंतर का साथ कैसे हो, क्योंकि कर्म क्षेत्र में जिम्मेवारियां अनेक बातें लौकिक अलौकिक की, ये निरंतर एक कंपेनियन जैसे एक साथी हमारे सदा साथ हो, इसका क्या स्वरूप हो सकता है आपके अनुभव से?
बहुत सहज सी बात है, हमें ये नशा हो जाए कि भगवान हमारा साथी है, वो गॉड फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, वो साथी है। ये फीलिंग, ये अवेयरनेस बढ़ाने में लोगों को देर लग रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत साथी बना लिए हैं। जैसे एक लड़की है, उसकी शादी एक आईएएस से हो गई, वो कलेक्टर है। अभी ये लड़की चाहे घर में रहे या जॉब में हो या मायके गई हो या यात्रा पर हो, उसको क्या नशा रहता है, मेरा पति कलेक्टर है। वो उसकी कॉन्शियसनेस में, उसकी डीप फीलिंग्स में उतर गया होता है। बस हमें भी इस चिंतन की जरूरत है क्योंकि वो स्थूल चीजें हैं और ये अति सूक्ष्म चीज है। भगवान मेरा साथी है, रियली वो साथी है। इस कॉन्शियसनेस को हमें बार बार बढ़ाना पड़ेगा। दिन में अगर हम इसको 5 बार, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 बार इस नशे में कोई आ जाए भगवान मेरा साथी है, अब आगे का चिंतन भी करना चाहिए। कभी करें तो मुझे डर किस बात का, मुझे चिंता क्यों करनी, मुझे निर्भय होकर रहना है, सारे बोझ उसको दे देने जब वो साथी है। अब भाई हम कहीं जा रहे हो स्टेशन पे, दो अटैची हो और हमारा एक साथी हो खाली, वो कहेगा ना एक मुझे दे दो, वो भी कहता है और हम दे ही नहीं, नहीं मेरी है तुम लेके ना भाग जाओ, वो कैसे काम चले। तो भगवान साथी है, वो हमारे बोझ भी हर लेता है। तो ये साथी की अवेयरनेस पांच बार सारे दिन में थोड़े से चिंतन के साथ, एक एक मिनट का चिंतन
जी।
छत्र छाया है वो सिर के ऊपर, उसकी छत्र छाया में हम सेफ हैं। जैसा संसार में कुछ भी होता रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े चिंतन के साथ इस अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए।
जी जी, और इसकी सचमुच कितनी सुंदर सी बात है, मेरा साथी इतना ऊंचा भगवान, तो वो तो एक नशे में होना ही चाहिए और अभ्यास में हम इसे जरूर
बहुत कुछ कर सकते हैं हम।
जी जी,
वो हमारे साथ है, उसको गॉड फ्रेंड के रूप में आह्वान कर लो और फील करो मेरे साथ साथ है। उसे बात करते रहो, खाना बना रहे हैं, शिव बाबा आपके लिए भोजन बना रहे, देखो मजे से खाना, आज मजाक करो ना अपने फ्रेंड से, आओ तो आप भी मदद करो, मैं अकेली हूँ, बहुत काम है मुझे।
मतलब केवल सीरियस चर्चा की जरूरत नहीं,
नहीं
है,
कोई सीरियस क्यों, तुम प्यार के सागर हो, मुझे भी थोड़ा दे दो, ये थोड़ा ही कहना है। तुम्हारा सारा प्यार मेरे लिए है, मुझे नहीं दोगे तो किसे दोगे, अधिकार के लिए बात करते रहो। कोई समस्या आ गई, हाँ गुड फ्रेंड बताओ क्या करना है, करो प्लानिंग, मुझे इससे बाहर निकालो। बिल्कुल अपनेपन से, अधिकार की भावना से, जैसे अपनों से हम यहाँ बात करते हैं ना,
जी जी,
ऐसे उससे बातचीत करते रहेंगे, थोड़ा ही दिन प्रैक्टिस करेंगे तो वंडरफुल अनुभव।
जी जी, जैसे ब्रह्मा बाबा कई बार अपना अनुभव शेयर करते हैं बैठे जी साकार मुरली में, कि मैं बाबा से आज ये बातें कर रहा था कि आपका रथ है, या कई बार खांसी होती थी, बाबा को कहते थे बाबा ये मेरी खांसी ठीक कर दो ना, तो कितना अच्छा लगता।
खूब हंसी मजाक करनी चाहिए जब वो हमारा हो गया।
जी जी,
अब ये थोड़ा ही वो भगवान है हमारे लिए, हमारा है, बाप है, माँ है, माँ से बच्चे कैसे रहते हैं, फ्रेंड है, सखा साथी है, भाई है, तो हम उससे ऐसे ही बात कर रहे हैं। माँ बाबा करता था, मैं नहा रहा हूँ बाबा, हमने आपके ऊपर लोटी चढ़ाई है दूध की, हमारे ऊपर पानी की तो चढ़ाओ। अब लोटा ही होता था नहाने का, ये मगबग नहीं आए थे, प्लास्टिक युग नहीं था, बाल्टी भी लोहे की, पीतल की, और लोटे भी नहाने के लिए। तो मजाक करते रहते थे बाबा से, क्यों नहीं भगवान खुश होगा ना, मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड मेरे से मजाक कर रहे, वाह उसको भी तो आनंद आएगा, ऊपर रह के बोर नहीं हो जाता होगा अकेला।
यही तो समय है जबकि उनको भी इस प्रकार की हंसी मजाक को अनुभव करने,
बाकी तो कोई जानेगा ही नहीं पूरा कल्प ये सब करना,
बाकी लोग आरती करते रहते हैं, श्लोक पढ़ते रहते हैं, केवल हम ही हैं जो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। पता जी, चीयरफुलनेस की बात थी कि चेहरा हर्षित मुख हो, मम्मा हमेशा हर्षित, बाबा हमेशा हर्षित, आप हमारी दादियां, लेकिन जब परिस्थितियां बातें, मम्मा की लास्ट टाइम में भी जब वो बीमार थी तब भी इतनी हर्षित थी, मैं कैसे हर्षित रहूं, बातें उस खुशी को छीनती हैं। और साथ ही कई बार ये भी देखा जाता है, यदि चेहरा ही मेरा ऐसा हो जिसमें मुस्कान ना आती हो तो क्या करें, तो इसका एग्जैक्ट भाव क्या है हर्षित,
तो चेहरा बदल दिया जाए। ऐसा है कि बहुतों के चेहरे ऐसे होते हैं कि थोड़ी ज्यादा गंभीर रहते हैं, जिसमें रंग की बात नहीं, चेहरों के कैसा भी रंग हो, जो चेयरफुल है वो तो चमकता ही है। इसमें एक तो अपने भविष्य का नशा, ईश्वरीय प्राप्तियां जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं उसका बहुत नशा, और परिस्थितियों में ज्ञान की थोड़ी थोड़ी बातें भी हमारे सामने रहें, उसके द्वारा हम परिस्थितियों का जो इफेक्ट हम पे आता है उसको हल्का करते चलें तो हम खुश रहेंगे। मुरली और अमृत वेले पे ध्यान दें, अगर वो दोनों चीज मिस होती है फिर चीयरफुल कोई नहीं रह सकता।
जी जी, ये दोनों
तो सारा दिन केयरफुल रहेंगे, अटेंशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे।
बहुत सुंदर, इस पे हम जरूर ध्यान दें क्योंकि ये भरपूर करने वाली चीज है। प्रताप जी, डी हमने लिया था, डबल लाइट और हमारा देवताई स्वरूप, तो ये खुशी के साथ ये हल्कापन भी जुड़ा ही हुआ है। ये डबल लाइट जब हम कहते हैं तो ये डबल लाइट का भाव और बहुत बड़ी धारणा है कि बातें परिस्थितियां जिनकी बात हो रही थी उनमें भी हम हल्के कैसे रहे।
नयों के लिए भी पुरानों के लिए भी मैं इसकी चर्चा कर देता हूं, क्योंकि बहुत पहले, बहुत बहुत पहले, शायद 50 साल हो गए, 48 साल, बाबा ने इसका रहस्य स्पष्ट कर दिया था। आत्मा भी लाइट और मन भी लाइट, यहां लाइट का अर्थ है हल्का। तो जब हम आत्मा के लाइट स्वरूप पर, प्रकाश स्वरूप पर रहते हैं, स्थिर होते हैं, और मन को हल्का रखते हैं, कईयों को बोझ लेने की आदत होती है, छोटी छोटी बातों में टेंस होने का संस्कार हो जाता है, थोड़ा हल्के रहे, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हमारे परेशान होने से दुनिया बदलेगी क्या, अरे मस्त रहो, आनंदित हो, हल्के रहते हैं लोग। दूसरा डबल लाइट का अर्थ बताया था, आत्मा भी लाइट और इसके अंदर शरीर भी लाइट का है ना फरिश्ता
जी,
उसमें रहना, तो ये डबल लाइट है। इसको डबल लाइट का अगर हम अभ्यास करते हैं ना तो मन भी हल्का होता जाता है, क्योंकि मन को हल्का करना ये बहुत बड़ी कला है। लोगों का मन हल्का है नहीं, सारा दिन कर्म का बोझ, कर्म में आने वाली अप्स एंड डाउन्स का इफेक्ट, उसमें सफलता असफलता लाभ हानि की गहरी चोट कभी कभी मन को उदास करती है। तो हमें ये अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि सभी अपने को टाइम दें, नियम बनाएं, भाई कामकाज से आए हैं इतना समय योग अवश्य करना है। बहुत लोग कर रहे हैं, उन्हीं का अनुभव मैं सुना रहा हूं
जी।
कामकाज से आते हैं ना धो के, हमें तो एक घंटा योग करना ही है और करते हैं, उससे क्या और मन हल्का हो जाता है। क्योंकि हल्का मन इसलिए भी नहीं रहता कि आत्मा निर्बल है, तो हर छोटी मोटी बात से अफेक्ट होती है, और जैसे योग लगाएंगे मन पावरफुल होगा तो रहेगा, अरे तुम छोटी सी बात से भारी हो रहे हो, लेव इट टू सी बाबा, बस मन हल्का हो जाएगा। तो इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। बहुत लोग टाइम दे रहे हैं अपने को, जो नहीं दे रहे उनको टाइम देना चाहिए, टाइम सबके पास है।
जी 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 बिल्कुल, मतलब ये है कि अपने सारे बोझ तभी हम बाबा को अर्पित कर पाएंगे। जिस साथीपन की बात हम कर रहे थे, आपने कहा ये मन के बोझ भी तो उनको जरूर देने चाहिए जब वो साथी हैं, तो ये हल्कापन सहज होता चलेगा। ब्रता जी, ये हमने लिया था एक नामी और एक बल एक भरोसा। तो एक प्रश्न है कि एक नामी तो समझ में आता है, लेकिन इकोनॉमी का क्या भाव है, कैसे रखें एग्जैक्टली? भले इकोनॉमी यहाँ नहीं था लेकिन उन्होंने ये
एक नामी का तो सीधा साधा एक का नाम हमारे दिलो दिमाग पे छाया हो
जी,
लेकिन इकोनॉमी यहाँ बाबा वैसे तो स्थूल में लोग यूज करते हैं, भाई कम खर्च करो। अभी जैसे ये सब समस्याएं चल रही है तो हर व्यक्ति जितना उसका बजट था थोड़ा सा बचाना चाहता है ना, भाई आगे पता नहीं कब तक काम न चले, लॉकडाउन हो जाए फिर कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी में इकोनॉमी का अर्थ है मन के संकल्पों को कम यूज करना, मुख के बोल को कम यूज करना। दोनों का अगर कम यूज करेंगे तो कम समय में ज्यादा काम एक्सलेंट हो जाएगा। इसकी इंग्लिश होती है इकोनॉमी येट एक्सलेंट। तो हम इन दोनों को कम खर्च करें, दुनिया वाले तो इस रूप से कहते हैं भाई ने कम खर्च करके देखो इतना अच्छा फंक्शन, कितना सुंदर एक्सलेंट कर दिया
जी।
हम मन और बोल की शक्तियों को कम यूज करें तो हमारे सारे कार्य एक्सलेंट हो जाएंगे।
प्रताप जी, एक बल एक भरोसे की जहां बात आती है तो बाबा हमेशा कहते हैं कि एक के भरोसे रहो, लेकिन कई बार बातें इतनी बिगड़ जाती हैं कि संशय होता है कि आखिर बाबा कहाँ हैं। ऐसे समय पर बाबा के साथ को हम कैसे फील करें? अब बाबा के जीवन के एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई लेकिन बाबा कितने अचल स्थिर एक भरोसे थे, हम ऐसे कैसे बने?
ये बात तो बहुत प्रैक्टिकल में लोगों के सामने आ रही है, चाहे कोरोना की समस्या आई बहुतों के साथ, कईयों के परिवार से कई लोग चले गए, या अति कष्ट उन्हें हुआ, पैसा भी बहुतों के पास नहीं था उसके कारण भी कष्ट हुआ, क्योंकि खर्च बहुत कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो सरकारों ने बहुत कोशिश की, लास्ट में बनाया कि इतना ही लेना है, लेकिन मनुष्य किसी अपने प्रियजन को बचाने के लिए क्या नहीं करता। लोगों ने जमीनें बेच दी, जेवर बेच दिए, माताओं ने बचाना तो पड़ता, फिर भी चले गए, तो एक आघात मनुष्य के मन पर पड़ा है और लगता है कि बाबा ने हमें मदद नहीं की। बिल्कुल, मैं जो प्रैक्टिकल है ऑन ग्राउंड लेवल वो बता रहा हूं, लेकिन बाबा मदद करता है। हम सभी को ब्राह्मण कुलभूषणों को विशेष रूप से ये जानना चाहिए कि बाबा की मदद वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। अब हो सकता है उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ दिया बाबा के पास कोई दूसरा महान कार्य रखा हो जिससे वो कराना चाहता है इस आत्मा के माध्यम से। अब यहां वो एक छोटे से परिवार को पाल रहा हो और उसको कोई बड़ा कार्य आगे की रचना के लिए उससे कराना हो तो वो कराता है, और यहां ऐसा नहीं वो कराता है तो इन्हें छोड़ दिया, यहां की जिम्मेदारी वो खुद उठा लेता है। कोई ना कुछ कारण बन जाएगा कि परिवार की अच्छी पालना होती रहे, किसी ना किसी को वो निमित्त बना देता है। तो हम जो ये मनुष्य के मन में संशय आ जाता है ना, तो बाबा ऊपर से मुस्कुराता है कि देखो मैं इनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन इन्हें पता नहीं है क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए ये संशय में आ रहे हैं। फिर भी ऐसा नहीं बाबा की मदद कम हो जाए, बच्चे कैसे भी हो जाए माँ बाप की मदद तो रहती है, वो मदद करता रहता है। इसलिए इस बात को गहराई से जानकर हमें उससे बल प्राप्त करना चाहिए, हमेशा उसमें विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे लिए सदा कल्याणकारी है, हमने अपने जीवन की डोर उसके हाथ में सौंपी है, वो इसे पार लगाएगा। लेकिन जहां तक मृत्यु की बात है, ये बड़ा गुह्य रहस्य है जिसका जब समय आ जाता है, बिना कोरोना के भी तो मरे हैं ना बहुत लोग।
बिल्कुल,
हमारे रिलेशन में एक ने शरीर छोड़ा, माता थी, होगी 55-58 साल की, बच्चे बड़े सब अच्छे अच्छे, उसके परिवार वाले हालांकि ज्ञान नहीं लिया लेकिन बड़े निश्चिंत से थे कि भाई इसका टाइम पूरा हो गया था, चली गई। देखो एक संकल्प ने उनको शांत किया हुआ था, जो चला गया वो वापस आएगा, थोड़ा ही रोने धोने से क्या होगा, ठीक है एक आध दिन रोते हैं जैसे लोगों की रस्म है। तो ये एक विचार है ना, मृत्यु को शिव बाबा रोकता नहीं है क्योंकि मृत्यु और जन्म का चक्र अलग है, इस पे एक्चुअली तो किसी का अधिकार नहीं है। तो इन गुह्य बातों को जानते हुए पहले अपने में भरोसा रखें, अपने सुंदर भाग्य में भरोसा रखें। बच्चे हैं, मान लो 2-3 बच्चे हैं और माता अकेली रह गई और जॉब भी नहीं है, पति जॉब करता था और वो चला गया, फिर भी इतना विश्वास हो कि जिसके हाथ में हमने अपने जीवन नैया समाज जीवन की बागडोर दी है वो सबको ठीक करेगा, तो हम उसको बांध सकते हैं, वो सबको ठीक करेगा।
बिल्कुल, मतलब हमें एक कालदर्शी होकर सोचते हैं तो हम बहुत भारी हो जाते हैं, हमें भी त्रिकालदर्शी होकर के सोचना होगा आदि मध्य अंत को, क्योंकि सचमुच जैसे आपने कहा माता पिता तो हमेशा मदद करते ही हैं, हम उसे अनुभव कर पाएं या समझ पाएं ये अलग बात है। इफ हमने लिया था बताइए फुल स्टॉप और फरिश्ता स्थिति, फुल स्टॉप से जुड़े हुए प्रश्न में कुछ भाई बहनों के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि कर्म करते सदा ही आप फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन कोशिश करते हैं फिर भी बार बार मन में यदि कोई बातें आ जाती हैं, पास्ट की बातें आ जाती हैं, तो फिर उस पे ब्रेक कैसे लगाए।
कईयों को ज्यादा सोचने की आदत है, इसमें सोशल मीडिया ने मुख्य भूमिका निभाई है। कईयों को पास्ट में रहने की आदत है, कई भूल नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते, उसने मेरे से ऐसा किया क्यों किया, मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, उसने मेरे से बुरा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, इसमें ही रहते हैं। और ये सोच सोच के वो कहीं ना कहीं अपने को तृप्त कर लेते हैं कि हम ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इससे मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। और भी कईयों में कई आदतें हैं, और समय अनुसार मैंने ज्ञान की है, वो ये बातें जो बाबा ने सुनाई है कई बार बताई है कि इस समय आत्मा की बैटरी क्योंकि बहुत डाउन हो गई है, 2-4-5 डिग्री पर है, 10 डिग्री पर होगी किसी की, 10 डिग्री भी क्या होती है बैटरी, तो इसलिए मन निर्बल काफी है। दूसरी चीज, आत्मा की अधिकतम शक्ति का प्रयोग मनुष्य बुद्धि के रूप में कर रहा है। अब आप देखिए जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनकी सारी बौद्धिक शक्ति पढ़ाई में लगी हुई है, ऑनलाइन के कारण ज्यादा लगी हुई है, तो मन की शक्तियां काफी कमजोर पड़ गई हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए कोई भी एक विचार आ जाता है उसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जैसे बाप फॉलो फादर के पहले उसमें हमने चर्चा की, बी वाले में भी जरूर थोड़ा थोड़ा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया जाए। मान लो आप स्टूडेंट हैं, जब हम पढ़ते थे ना तो मैथमेटिक्स का बहुत सारा काम स्लेट पे किया करते थे, क्योंकि कॉपी इतनी कहां तक भरेंगे, एक रोज भर जाए, स्लेट पे करते थे। तो ऊपर दोनों ओर शिव बाबा का चित्र बना लेते थे, उसे देखते रहते थे, बाबा है मेरे पास ही बैठा है। इससे क्या बहुत सारे संकल्प शांत, और ऐसा लगता था कि जैसे बाबा की मदद बहुत सारी मिल रही है। तो ये हम करते रहते थे, ऐसे कुछ स्वमान रख लें, कुछ 2-4 ज्ञान की पॉइंट रख लें। मान लो यही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स का उदाहरण दूं, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी है, लेकिन अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है और सोच रहे हैं पता नहीं इतने मार्क्स आएंगे या नहीं, उसके कारण थोड़े व्यर्थ चल रहे हैं, लेकिन अपने में कॉन्फिडेंस धारण करें, बाबा साथ है जो हम सोचेंगे वही होगा। तो ऐसे ज्ञान के थोड़े सुंदर पावरफुल पॉइंट्स भी साथ हों, भगवान का अभ्यास, सोल कॉन्शियस, ये सब अभ्यास कर्म में किए जा सकते हैं, इसके लिए कोई बैठने की जरूरत नहीं, केवल अपनी एक प्लानिंग करने की जरूरत है,
जी फुल स्टॉप, इजी हो जाएगा। कई बार ये होता है, इनका एक अगला प्रश्न भी था कि संबंध संपर्क में चाहे लौकिक चाहे अलौकिक में जब हम किसी भी बात को फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते हैं तब समय प्रति समय वही व्यक्ति वही पुरानी बातें स्मृति में लाता है और साथ साथ वो वाली बातें जैसे हमें परेशान करने के लिए उठाता रहता है, याद आती भी हैं और याद दिलाते भी हैं, तो फिर यहाँ मुश्किल होती
है। इसमें यही है कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल स्थिति की ओर अच्छा चलेंगे, देखिए मनुष्य को ये वाइब्रेशंस का जो इफेक्ट है हमारी, इसको समझ लेना चाहिए। जब हम इन सब व्यर्थ की बातों से अनइफेक्टेड होते जाएंगे, मैं दूर की बात ना कहूं, पति पत्नी की बात है जो साथ रहते हैं, अब पति को पता चल गया कि पत्नी ने मैरिज से पहले ये गलती कर ली है, अब वो उसे बार बार याद दिलाता है तुम ऐसी थी, अब नेचुरल है साथी है, और वो ऐसा याद दिलाएगा तो खुशी भी चली जाएगी, संकल्प भी बहुत चलेंगे मैंने इन्हें क्यों बता दिया, जबकि पति को समझदार होना चाहिए, पत्नी ने अगर कुछ बता दिया या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो गई तो अब संबंधों को सुंदर बनाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत भाई, आप वर्तमान का आनंद लो ना। एक तो ये दूसरे मनुष्य की गलती भी होती है कि वो दूसरे को सुख से जीने देना नहीं चाहता है, बहुत बड़ी गलती है मनुष्य की और ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छे स्वमान में रहेंगे, अगर हम अपनी स्थिति अच्छी बनाएंगे, अपने मनोबल को बढ़ाएंगे, तो जब पति कहेगा ना तुम ऐसी थी तो मुस्कुरा देगी, मैं ऐसी थी लेकिन अब कैसी हूं, अगर बोलना ही पड़े तो ये बोल देगी अब मुझे भगवान मिल गया, मेरा भाग्योदय हो गया, चलो गलती तो मनुष्य करता ही है, गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया और उन गलतियों को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। तो अगर ऐसा उत्तर देंगे तो अच्छा होगा, अगर चिढ़ेंगे लड़ाई कर देंगे, तुम बार बार वही बात बताता है मुझे, तुम कैसे हो, तुमको अकल नहीं है, तुमने क्या क्या किया था, मैं भी जानती हूँ, मैं भी खोज करूंगा,
तो बातें बिगड़ जाती है,
सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो ये जो हमारा स्वमान है, हमारी स्पिरिचुअल स्थिति है, हमें सहनशीलता सिखाती है, इससे हम इन चीजों से पार हो जाते हैं।
जी जी, फरिश्ते से जुड़ी एक बात आई है प्रताप जी की, बाबा कहते हैं कि कर्म करते सदा फरिश्ते ड्रेस में रहो तो सहज ही तुम बाप समान बन जाओगे, लेकिन जब हम ऑफिस में क्लाइंट से बात करते हैं तो बुद्धि का सारा ध्यान अटेंशन तो वहीं चला जाता है, सारी स्मृतियां ही भूल जाती हैं, तो क्या करें?
हाँ, इसके लिए भी सिंपल बात है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके सामने दिन में 50 लोग आते हैं, आप एक छोटा सा अभ्यास क्यों नहीं कर लें, जो आ रहा है वो आत्मा है, भगवान का बच्चा है और मैं एक महान आत्मा हूं। एक उदाहरण दिया
जी,
स्वमान अलग अलग लिए जा सकते हैं, 6 दिन के लिए 6, 5 दिन ड्यूटी,
मतलब शुरू में हम ये कर लें, लेकिन उसके बाद यदि विस्मृति हो गई
कोई तो... बात नहीं, अगर विस्मृति हो गई तो कोई बात नहीं, उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से वो नेचुरल स्थिति बन जाएगी और उससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं ना, काम सहज होगा। मान लो आप बैंक में हैं और कैश संभाल रहे हैं और आपके पास शायद दिन में 50, 60, 70 लोग भी आएंगे, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिस बनी हुई है लाइट रहना, अब भाई आए हैं हमें उनका काम करना है ना, बिजनेस है हमारा, ये तो नहीं हम दुत्कार दें क्यों आया अभी तुम, परसों आना है, नहीं होगा तुम्हारा काम तो बैंक ही फेल हो जाएंगे
जी, जी।
तो प्यार से करते हैं, इसमें आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया, थोड़ी मधुर वाणी, आओ भाई आओ कर देते हैं, थोड़ा सा ठहर जाओ और अपने को किसी भी स्वमान में मैं इष्ट देवी हूं, देखो आपके काम कितने सहज होंगे, आपने नोट गिने तो गलती नहीं होगी, कोई वैसा नोट आ गया बनावटी, क्या कहते हैं आजकल उसको,
नकली
नकली तो उसका फट से पकड़ में आ जाएगा, तो अनेक समस्याएं ही नहीं होंगी अगर हम अपनी स्थिति में रहें, करेक्ट काम होगा, परफेक्शन आएगी, हम परफेक्ट नहीं है तो काम परफेक्ट कैसे होंगे, बस ये अंतर हो रहा है, हम परफेक्ट नहीं है काम परफेक्ट चाहते हैं, टेंशन होती है कि परफेक्ट होगा नहीं।
जी जी,
तो हम अपनी मनोस्थिति को थोड़ा सुंदर बनाएं।
बिल्कुल, शायद इसीलिए गीता में भी कहा गया योग कर्मेषु कौशलम्, कि योग करोगे तो हर कर्म कुशल होते चलेंगे उसमें। भ्राता जी, जी से हमने लिया था ज्ञान स्वरूप और गुण ग्राही स्थिति, जो इस मास पहले 15 दिन हम सबने किया और बहुत सुंदर सुंदर आप सबने अपने चिंतन भी भेजे थे। भ्राता जी, एक प्रश्न है इनका कि इतना अथाह ज्ञान, एक के बारे में सोचते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे के बारे में सोचते हैं तो तीसरा रह जाता है, और हैं सभी महत्वपूर्ण, रोज की मुरली, इतनी सारी पॉइंट्स। तो मम्मा बाबा ने जैसे अपने ज्ञान को पूरा स्वरूप बना लिया, हम कैसे बनाएं?
इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 100 पॉइंट्स हैं, क्या क्या करेंगे। बाबा ये भी कहता है, क्रोध न करो, देवान में रहो, नम्रचित बनो, और झूठ न बोलो, चोरी न करो, फैशन न करो, बहुत बातें हैं।
जी,
लेकिन अगर हम ज्ञान की रोज की बातों को थोड़ा स्मृति में रखेंगे, जिस चीज को हम स्मृति में रखते हैं वो जीवन में समाती जाती है। इस सिद्धांत को हम याद रखें, और जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करेंगे, समझ लो उसमें सारा ज्ञान समा गया। जैसे बाबा का एक गुह्य महावाक्य मैं याद करता था, बहुत बहुत मैंने उसको याद किया और फिर सुनाया भी। एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो अगर हम योगयुक्त हो जाएं, अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें और थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, भाई मुझे नम्रचित होना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, तो ये स्मृतियां हमको स्वरूप बना देंगी, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक एक बात पे सोचेंगे, मुझे क्रोध छोड़ना है, उसी से लड़ रहे हैं 20 साल हो गए, क्रोध छूटता नहीं, तो वो नहीं छूटेगा। उसकी विधि है, आत्मिक स्वरूप में आ जाओ, योग अभ्यास करो और संकल्प करो क्रोध मुझे छोड़ना है। कोई मेरे से क्रोध करे तो कैसा लगेगा? अब बच्चे बड़े हो गए, मैं उन्हें क्रोध करता हूँ, वो सामना करने लगे, तब क्या होगा मेरा? तो शांत छूट जाएगा।
बिल्कुल, मतलब ये जो रोज जैसे हम मुरली में इतनी सारी पॉइंट्स आए, अव्यक्त मुरलियों को देखें तो 69 से लेके अब तक हैं, तो क्या सार रूप में कुछ बातें निकाली जा सकती हैं जिसमें सभी चीजें शामिल हों?
बहुत गुड क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। हम पहली लाइन पे ध्यान दें अव्यक्त मुरलियों की, एक स्वमान की नजर से भगवान हमें देखता है, उस स्वमान की प्रैक्टिस किया करें। ऐसी आप 20-25 स्वमान की पॉइंट्स निकाल लें, उनकी प्रैक्टिस किया करें। और जो बाबा मुरलियों में कहते हैं, मान लो संडे की मुरली आ रही है, उनकी प्रैक्टिस करते रहें थोड़ी थोड़ी, तो आपको ये नहीं लगेगा हमें बहुत सारा कुछ करना है। बहुत कुछ करना ही नहीं है, सोल कॉन्शियस होना है, केवल पवित्र बनना है, भावनाएं श्रेष्ठ बनानी है। तो रोज जो मुरली में बाबा हमें, देखो उसमें कुछ ज्यादा बात नहीं होती, 2-3 ही होती है, उनको प्रैक्टिस में लाएं, तो बस सारी मुरलियां जीवन में समाती जाएंगी।
जी जी जी, भ्राता जी, जो गुण ग्राहकता की बात है, हम तो सबसे गुण उठाएं जैसे बाबा भी गुण उठाते हैं, हमें कहते हैं, लेकिन बाबा ने एक महावाक्य कहा है कि अवगुण में भी गुण देखना, इसको कहते हैं गुण ग्राही। तो इसे स्पष्ट करें, और हम कई बार गुण देखते हैं लेकिन सामने वाले के व्यवहार में अवगुण इमर्ज रहता है, तो उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हम किसी के अवगुण का चिंतन वर्णन तो नहीं करते, लेकिन वो आत्मा इसका यदि फायदा उठाते हुए कईयों को नुकसान पहुंचा रही हो तो क्या करें?
हाँ, ये भी होता है कई बार, और बहुत जगह हो रहा है कि जिसमें जो अवगुण है, मान लो एक व्यक्ति में दूसरों को डांटने डपटने का अवगुण है, अब ये अवगुण ऐसा है इसको कैसे न देखें, मान लो हम ही डांटने लगे तो दिखाई देगा ना। लेकिन मामा की जैसे मैंने बात कही थी, ये हमारे चित पे ठहरे नहीं। जो बाबा की एक बात थी कि उसको रहम की दृष्टि से देखेंगे कि यह आत्मा बेचारी बेचारी परवश है, मुझे इसको वाइब्रेशंस देने हैं, तो वो उसकी जो चीज है हमारे चित पे ठहरेगी नहीं, हमारी अपनी महान चीजें हमारे चित पे ठहरेंगी। दूसरा, उसमें कोई गुण भी तो है, तो इस अवगुण को जरा किनारे करके उसके अवगुण पे ध्यान चला जाए। तीसरा, भाई हर व्यक्ति अपने अवगुणों को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, छोड़ेंगे। चौथा, ये अवगुण मेरे में ना आ जाए, जैसे मुझे उसका वो अवगुण पसंद नहीं है, ये अवगुण मेरे में होगा तो हजारों को पसंद नहीं होगा। तो मैं, ये हुआ उसके अवगुण से हमने गुण सीख लिया, मैं इस अवगुण को अपने अंदर नहीं आने दूंगा तो एक पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी।
जी जी जी, ये बहुत ही गहन है, इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यदि कोई ऐसा दिखाई दे रहा होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
दिखाई देते हैं, हम संगठन में रहते हैं, दो चार तो ऐसे होंगे जो डांट के ही बात करते हैं, अच्छा जो उल्टी सुलटी बात करते हैं।
जी,
तो आपने बहुत अच्छी क्लास भी कराई तो गया, भाई क्या क्लास का, ये कोई क्लास है, इधर की पॉइंट उधर की पॉइंट याद कर ली, धारणा तो कुछ करते नहीं, लेक्चर देने में होशियार, तो बोलने वाले तो बोलेंगे लेकिन हम शांत रहे, मुस्कुराते रहे और ये सीख लेंगे, हमें ऐसा किसी को नहीं बोलना, हमें आगे बढ़ाना। हाँ भाई क्लास कराई, वाह बहुत अच्छी कराई, और अच्छी कराना अगली बार, इससे तुम भी बाबा की सेवा में लग जाओगे, अनेकों का कल्याण होगा। तो हमें वो न सीख के ये सीखना है।
बहुत सुंदर अमृत जी, एच हमने लिया है हिम्मत और हीरो पाठधारी, इस पे अभी लगातार आप सब प्रयास पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। प्रश्न ये है अमृत जी कि बाबा कहते हैं हीरो पाठधारी अर्थात विजयी, तो यदि इस जीवन में ब्राह्मण जीवन में कभी किसी मोड़ पर हमारी हार हो गई है तो क्या हम हीरो पाठधारी नहीं?
हार को भी जीत में बदल दें। कई बार मनुष्य बार बार हार के जीत के शिखर पर भी पहुंच जाता है, जैसे हिमालय पे चढ़ने वालों को हुआ, जैसे कई सेनाओं के साथ हुआ, कई राजाओं के साथ हुआ, बार बार हार के उन्होंने कारण ढूंढ लिया, हार का कारण क्या है, उसको जीत में बदल दिया। तो वास्तव में ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जिसकी कभी हार ना हो, लेकिन हम हार से सीख कर आगे बढ़ते चलें। कोई हार हो भी गई तो उसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो, विजय हमारी होनी है, हम विजयी रतन हैं, हमें हीरो पार्ट बजाना ही है, और हीरो पार्ट बजाना यहीं से शुरू करें, सबको सुख देना, ऐसा पार्ट बजाना जैसे ब्रह्मा बाबा मामा ने बजाया कि हमें सब फॉलो करें, दूसरों के लिए अच्छे बोल बोलना, ऐसे चलना, ऐसे देखना, ऐसे कर्म करना जिसको संसार फॉलो करे, तो बस पूरा हो जाएगा
जी,
हम विजयी बन जाएंगे।
बिल्कुल, मतलब एक बार दो बार यदि हार हो भी गई है चित पे ना रखें, लगातार पुरुषार्थ हमारा चलता रहे विजयी बनने का। भ्रते जी एक प्रश्न इस पे आया है कि मेरा प्रश्न ये है कि अब तक बहुत सारे टॉपिक पे हमने पुरुषार्थ किया, इससे बेशक हम आगे तो बढ़े ही हैं, लेकिन अभी भी उतना ही ज्यादा पुरुषार्थ करना और रहा हुआ है, तो कृपया बताएं दो चार ऐसी बातें जिन्हें हम जीवन में दृढ़ता से धारण करें तो जिस माला की संख्या को हमने अपने लिए सोचा है हम वहां तक पहुंचे।
एक तो अमृत वेले बहुत अच्छा व्यतीत करें, केवल पौना घंटा नहीं, कम से कम 4 से 6 2 घंटे, उसमें अच्छा चिंतन, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सेवा से रुध्यान, फिर मुरली का बहुत आनंद लें। और सुहाने एक ऐसी चीज है जिस पर मैं बार बार कहता हूं, कई लोग बोर भी होते होंगे कि एक ही बात कह रहे हैं, स्वमान में बहुत गहराई है। आज मैं सोचू मैं विश्व कल्याणकारी हूं, स्वमान पूरा नहीं हो गया, बड़ी डेप्थ है इसमें, उसमें चलते चले अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को, अपने नशे को बढ़ाते चले, और थोड़ा कुछ धारणाओं पे ध्यान दें, अपने लिए कम से कम 5 सुंदर धारणाएं तो चुन के ही रखें, न्यारे और प्यारे रहना है, मुझे सबको सुख देना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकले मेरे, ऐसी कुछ 5 धारणाएं जिसको जो भी चाहें अपने लिए रख लें, तो निश्चित रूप से हम आगे निकल जाएंगे और जो लक्ष्य हमने बनाया है उस पर पहुंच जाएंगे। दादी जानकी से हमने सीखा था जब हम छोटे से आए थे तो अपनी माला का नंबर फिक्स करो, हमने भी कर दिया और उसकी ओर चलो, तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी, सचमुच अब तक जो भी किया है उन पे बहुत गहराई से आपने प्रकाश डाला है, एक रिवीजन हम सब का हो गया है, आगे जैसे बढ़ते चलेंगे लेकिन इन सब बातों को अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ में हम शामिल करते चलेंगे। आपके सुंदर प्रकाश के लिए, सुंदर मार्गदर्शन के लिए दिल से बहुत बहुत सभी भाई बहनों की ओर से शुक्रिया।
ओके,
एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, इसे आप वतन में बाबा के साथ जरूर अनुभव किया कीजिए, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा हमें, हम छोटे से फरिश्ते को अपनी गोद में लेकर ये गीत गा रहे हैं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इस गीत की जो अंतिम पंक्तियां हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में ही मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। यही भाव प्यारे बाबा का और मम्मा का हम सब के लिए होगा ना, कि हम अब ऊपर हैं, हम अब एक नए पार्ट में हैं, लेकिन अपने बच्चों में सारा संसार हमें देखेगा, हमारे बच्चे हमारे कार्य को संपूर्ण करेंगे। यही आश हर एक माता पिता की होती है। तो उन्होंने अपना सब कुछ हमें प्रदान किया है, प्रदान कर रहे हैं, कितना प्यार कितनी पालना। अब बारी हमारी अपने माता पिता को प्रत्यक्ष करने की, सारे संसार को ये संदेश देने की कि परमात्मा कौन है, उनकी रचना कौन है। जब भी जहां से भी हम गुजरें हमें देखकर लोग कहें कि ये किनके लाल हैं, किनके बच्चे हैं, यही तो एक रिटर्न देना होगा और यहीं से तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। लेकिन ये तब होगा जब हम ये सुंदर बातें जो हमारे माता पिता ने हमें प्रदान की हैं, ये सुंदर शिक्षाएं जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, उन्हें हम अपने जीवन में उतारते चलें। बातें आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य पूरी तरह अपने माता पिता पर, कि उनके समान बनना है, तख्त नशीन बनना है, अपने माता पिता के तख्त को जीतना है। और यदि वो होते तो क्या करते, जो हमारा मूल सूत्र है, बाबा होते मम्मा होते कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे करते, बस इसे अपने सम्मुख रखते हुए हम उनके समान बनते चलें। ये समय की भी बलिहारी है और ऊपर से हमारे माता पिता हमारी दादियां अपनी संपूर्ण शक्ति भी हमें प्रदान कर रही हैं। तो क्यों ना इस समय का संपूर्ण लाभ उठाते हुए हम सब अपने माता पिता के समान बन जाएं और उन्हें सारे संसार में प्रत्यक्ष करें। ओम शांति।